पृष्ठ संख्या 645, खातिमे सुलेमान। एक, प्रसिद्धि है कि हजरत सुलेमान दो के पास एक अंगूठी थी जो ईश्वर वाचक मंत्रों से अंकित थी। उसके प्रभाव से समस्त संसार पर उनको प्रभुत्व प्राप्त था। अतः मानव, दानव, पशु, पक्षी, देव, तीन, परी सभी हजरत सुलेमान के वश में थे। वायु उनके सिंहासन को उनकी इच्छा अनुसार उड़ा ले जाती थी। एक बार उस अंगूठी को सखरा नामक दुष्ट देव ने चुरा लिया। परिणाम स्वरूप हजरत सुलेमान के हाथ से राज्य एवं वैभव जाता रहा। अंततः वह अंगूठी उस देव के पास भी न रही और समुद्र में गिर गई। वहां उसे एक मछली ने निगल लिया। हजरत सुलेमान जब बादशाही से वंचित हो गए तो वे एक मछुए के यहाँ जाकर नौकर हो गए। मछुए ने प्रसन्न होकर अपनी कन्या का विवाह उनसे कर दिया। एक दिन हजरत सुलेमान का ससुर एक मछली पकड़कर लाया। जब उनकी पत्नी ने उसे चीरा तो मछली के पेट से खोई हुई मुद्रिका निकल आई। उन्होंने उसे पहन लिया और वे पुनः सकल संसार के बादशाह बन गए। बादशाह बनकर उन्होंने मछुए की बेटी को, जो आपकी पत्नी थी, मलिका चार बना लिया और सखरा देव को खूब दंड दिया। खातिमे सुलेमानी अथवा अंगुष्ठरी ए सुलेमानी, नगीने सुलेमान आदि इन्हीं प्रसिद्धियों का स्मरण कराते हैं। एक, हजरत सुलेमान की अंगूठी। दो, यहूदियों के एक प्राचीन बादशाह जो ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों के पैगंबर माने जाते हैं। अंग्रेजी में उनका नाम सालेमन है। वह हजरत दाऊद डेविड के पुत्र थे। कहते हैं कि खुदा ने उन्हें सभी जीवों की भाषा सिखाई थी। तीन, फारसी भाषा में देव का अर्थ जिन है। चार, रागी। पृष्ठ संख्या 646। कुछ उदाहरण। क, चूबा देव दारद सुलेमान निशस्त, कुनद यावा अंगुष्टरे राजे दस्त। एक, अर्थात जब सुलेमान देव के साथ बैठे उठेगा तो हाथ से अंगूठी खो बैठेगा। ख, मन आ नगीने सुलेमा बहेच न सतानम, कि गाह गाह दरु दस्ते आहर मन बाशद। दो, अर्थात मैं हजरत सुलेमान की वह मुद्रिका मुफ्त में भी न लूं जिस पर कभी कभी देव का अधिकार हो। कवि जायसी ने हजरत सुलेमान की अंगूठी का उल्लेख इस प्रकार किया है। हाथ सुलेमा केरी अंगूठी, जग कह दान दीन झरी मूठी। तीन, हरे चार दज्जाल। दज्जाल एक व्यक्ति का नाम है जो कियामत पांच के दिन प्रकट होगा। वह गधे पर सवार होगा। वह एक आंख से काना होगा और उसके ललाट पर मोटे अक्षरों में काफिर लिखा हुआ होगा। वह हजरत ईसा होने का दावा करेगा। छः, उसका हजरत ईसा मौत के घाट उतार देंगे। फारसी साहित्य में खरे दज्जाल का प्रायः उल्लेख किया जाता है। शेख सादी ने गुलिस्तान में इसका वर्णन इस प्रकार किया है। एक, मौलाना निजामी सिकंदर नामा, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, सन 1876 ईस्वी, पृष्ठ 101। दो, दीवाने हाफिज मदबाई मजीदी कानपुर, पृष्ठ 129। तीन, जायसी ग्रंथावली पद्मावत, पृष्ठ 5। चार, गधा। पाँच, महाप्रलय। छः, हजरत ईसा की सवारी में एक गधा रहता था जिसे खरे ईसा कहते हैं। पृष्ठ संख्या 647। चू सगे दरिंदा गोश्त याफत न पुरसद, की शुतुरे सालिहस्त या खरे दज्जाल। एक, अर्थात जब एक हिंसक कुत्ता मांस पाएगा तो वह न पूछेगा कि यह सालिह की ऊँटनी दो का है या दज्जाल के गधे का। भाव यह है कि दानव भक्ष और अभक्ष में कोई अंतर नहीं समझता। खरे तीन ईसा। हजरत ईसा पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हैं। वह गधा जो उनकी सवारी में रहता था उसे खरे ईसा कहा जाता है। फारसी कवियों ने खरे ईसा का उल्लेख अपनी रचनाओं में किया है। शेख सादी गुलिस्तान में लिखते हैं, खरे ईशा गरस ब मक्का बुरंद, चूं बयायद हनूज खर बाशद। चार, अर्थात यदि ईसा के गधे को मक्के ले जाएं तब जब वह वापस आएगा तो वही गधे का गधा रहेगा। खिज्र इलियास ईसा तथा इद्रीस। प्रसिद्धि है कि खिज्र इलियास ईसा तथा इद्रीस ये चारों पैगंबर जीवित हैं। क, एक, खिज्र अमर है, वे खुशकी स्थल पर पथभ्रष्टों के मार्गदर्शक हैं। दो, इलियास भी जीवित हैं, वे तरी जल पर भूले भटकों को रास्ता दिखलाते हैं। एक, गुलिस्तान, मुतरजम नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, 1954 ईस्वी, पृष्ठ 239। दो, हजरत सालिह समूद जाति के एक प्रसिद्ध पैगंबर थे। उन्होंने एक पत्थर में से बच्चे सहित एक ऊँटनी को उत्पन्न किया था। तीन, गधा। चार, गुलिस्तान, मुर्तजम नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, सन 1954 ईस्वी, पृष्ठ 214। पृष्ठ संख्या 648। फारसी साहित्य में वस्तुतः जल एवं स्थल पर पथ प्रदर्शन का कार्य हजरत खिज्र को ही सौंपा हुआ है। समुद्रों में जल पोतों तथा नौकाओं का पथ प्रदर्शन करना तथा जंगलों एवं मरुस्थलों में यात्रियों का मार्गदर्शन करना हजरत खिज्र ही का काम समझा जाता है। ख, ईसा चौथे आकाश पर जीवित हैं। ग, इद्रीस हजरत आदम के वंश से सातवीं पीढ़ी में से थे। प्रसिद्धि है कि दीर्घ आयु व्यतीत करने के उपरांत वे भी सशरीर आकाश पर चले गए। हजरत इद्रीस का उल्लेख फारसी काव्य में बहुत कम होता है। उदाहरण क, हमेशा तालबे इलियासो खिज्र सेरे आबस्त जे चश्मा की हनुजश कुनद सिकंदर याद लबे अदु एतु सैराब लेक जा आबे की जरबते तु चकानद जे दशना ए फौलाद। एक, आबे हयात का चश्मा उस अमृत का चश्मा है जिसका पान करने के लिए सिकंदर हजरत खिज्र को अपना पथ प्रदर्शक बनाकर गया था, परंतु सिकंदर ने वह अमृत नहीं पिया। प्रसिद्धि है हजरत इलियास खिज्र दोनों भाइयों ने आबे हयात पिया है, अतएव अमर हैं। दो, इसको अपनाकर कवि उर्फी अपने आश्रयदाता के लिए प्रार्थना करते हुए लिखते हैं कि सदैव जब तक कि हजरत इलियास और खिज्र के होंठ उस चश्मा सोता के जल से तर हैं जो अब तक सिकंदर का स्मरण करता है, आश्रयदाता के शत्रु के होंठ भी तर हों, परंतु उस आब से जो आश्रयदाता का इस्पात से बना हुआ खंजर आघातों से टपकाता है, भाव यह है कि आश्रयदाता के शत्रु सदैव नष्ट भ्रष्ट रहें। एक, कवि उर्फी कसायदे उर्फी नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, सन 1928 ईस्वी, पृष्ठ 60। दो, मौलवी अब्दुल मजीद खान अजीबो गरीब नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, सन 1930 ईस्वी, पृष्ठ 325। पृष्ठ संख्या 649। ख, दर आसमा चे अजब गर जे गुफ्ता ए हाफिज समा ए जुहरा बरक्स आबुरद मसीहा रा। एक, जुहरा सितारा तीसरे आकाश पर है और हजरत ईसा चौथे आकाश पर, अतः वे पड़ोसी हैं। इस समीपता को ध्यान में रखकर कवि हाफिज लिखते हैं कि यदि तीसरे आकाश पर जुहरा के कवि हाफिज की गजल गाने से हजरत ईसा चौथे आकाश पर नाचने लग जाएं, तो यह कोई आश्चर्यजनक बात न होगी। ग, हजरत इद्रीस के आकाश पर चले जाने का उल्लेख मौलाना जामी इस प्रकार करते हैं, चुशुद तद्रीसे इद्रीस आसमानी बनूह उफ्ताद दीरा पासवानी। दो, हजरत इद्रीस पहले भूमि पर सहधर्मियों को धार्मिक शिक्षा देते थे, परंतु जब उनका पढ़ाना आकाश पर हो गया अर्थात जब वे आकाश पर चले गए, तो धर्म की रक्षा करने की सेवा हजरत नूह को सौंप दी गई। सूफी फना मृत्यु का बड़े उल्लास के साथ स्वागत करते हैं, क्योंकि फना ही आत्मा को शरीर रूपी पिंजरे से निकालकर उसे प्रियतम के आलिंगन का आनंद प्राप्त कराती है, अतएव वे हजरत खिज्र के अमृतत्व की घोर निंदा करते हैं। इस संबंध में ख्वाजा फैदुद्दीन अत्तार की कुछ पंक्तियां देखिए, बूद यक दीवाना ए आली मकाम खिज्र बाओ गुफत ए मर्दे तमाम राय आ दारम की बाशी यार मन गुफत बा तूबर नयायद कार मन जाकी खुर्दी आबे हैवा चंद राह ताब मानद जाने तू ता देर गाह। एक, दीवाने हाफिज मदबाए मजीदी कानपुर, पृष्ठ 11। दो, यूसुफ जुलेखा नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, सन 1896 ईस्वी, पृष्ठ 42। पृष्ठ संख्या 650। मन बर आनम ताब गोयम तरके जा जा की बे जाना न दारम बरगे जा। एक, अर्थात एक उच्च कोटि का दीवाना था। हजरत खिज्र ने उससे कहा कि हे सिद्ध पुरुष, मेरा दिल चाहता है कि तू मेरा दोस्त हो जाए। दीवाने ने उत्तर दिया, तेरे साथ मेरी नहीं बन सकती, यानी मैं तेरा दोस्त नहीं बन सकता, क्योंकि तूने आबे हयात कई बार पिया है, अतएव तू सदैव जीवित रहेगा। मैं ऐसा पुरुष हूँ जो हर समय इस जान से छुटकारा पाने की सोचता रहता हूँ, क्योंकि बिना परम प्रियतम के मिलन के मुझे चैन नहीं। हिंदी सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने हजरत खिज्र का पथ प्रदर्शक के रूप में वर्णन किया है। दानियाल गुरु पंथ लखाए, हजरत ख्वाज खिजिर तेही पाए, भय प्रसन्न ओही हजरत ख्वाजे, लिए मेरई जह सैयद राजे। दो, हजरत ख्वाजा खिज्र से कहीं शेख दानियाल की भेंट हो गई। वे शेख साहिब पर प्रसन्न हो गए और जहां सैयद राजी सैयद राज हामिद शाह सूफी रहते थे वहां उन्हें ले जाकर मिला दिया। खिज्र और हरियाली। प्रसिद्धि है कि हजरत खिज्र सब्ज हरे रंग के वस्त्र धारण करते हैं और जहां वे बैठते हैं वहां सब्जा घास उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण मुसलमान सब्ज रंग को आदर एवं मान देते हैं। ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार ने उक्त प्रसिद्धि का उपयोग करते हुए तोते को हजरत खिज्र के साथ उपमा दी है। वे लिखते हैं, हर कुजा सरसब्जी अजफर्रे ऊ। तीन, एक, मंतिक उत्तर, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, पृष्ठ 49-50। दो, जायसी ग्रंथावली, पद्मावत, पृष्ठ 8। तीन, मंतिक उत्तर, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, पृष्ठ 48, पृष्ठ संख्या 651। अर्थात संसार में जहाँ कहीं भी हरियाली है उसी की आन बान से है। आगे ख्वाजा फरीदुद्दीन ने तोते के मुख से कहलवाया है, खिजरे मुर्गानम अजानम सब्ज पोश, बू की खाहम कर्द आबे निज्र नोश। एक, अर्थात मैं पक्षियों में हजरत खिज्र सा स्थान रखता हूँ, मेरे लिए उचित है कि आबे हयात का पान करूँ। खूने सियावश या सियाबुश। खूने सियावश का अर्थ खूने नाहक अनुचित वध अथवा व्यर्थ का रक्तपात लिया जाता है। सियाबुश ईरान के बादशाह कैकाउस का बेटा था। वह अपनी सौतेली माता के व्यंगों से तंग आकर अपने पिता के शत्रु तुरान के बादशाह अफरासियाब के पास चला गया। अफरासियाब पहले तो उसके आने से बहुत खुश हुआ और अपनी लड़की का विवाह उससे कर दिया, परंतु कालोपरांत अपने दूसरे जामाता के बहकाने से उसका नाहक वध कर दिया। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो आकाश पर अरुणिमा होती है, कवि उसे भी खूने सियावश कहते हैं। मौलाना निजामी ने इन्हीं काव्य रूढ़ियों का उपयोग करते हुए लिखा है, निबिष्टा बरी हरदो आलूदा तश्त, जे खूने सियावश बसे सर गुजरश्त। दो, अर्थात रक्त से ओत प्रोत इन दोनों परातों भूमि और आकाश पर सियावश के रक्त से अनेक दुखप्रद घटनाएं लिखी हुई हैं। एक, वही पृष्ठ 49। दो, सिकंदर नामा, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, सन 1876 ईस्वी, पृष्ठ 88, पृष्ठ संख्या 652। दारा सिकंदर। फारसी साहित्य में दारा और सिकंदर की शत्रुता का वर्णन जी खोलकर किया गया है। इनका वैर सुप्रसिद्ध है। दारा तृतीय अकिमिनियन हखा मानिश वंश का अंतिम राजा था, जिसने 336 ईस्वी पूर्व से 330 ईस्वी पूर्व तक ईरान पर शासन किया। इसके शासनकाल में सिकंदर महान ने सन 331 ईस्वी पूर्व में ईरान पर आक्रमण किया। एक, दारा को 330 ईस्वी पूर्व में पराजय हुई और वह अपने अंगरक्षकों द्वारा मौत की नींद सुला दिया गया। दो, सिकंदर ने उनकी मुट्ठी गर्म की थी। ख्वाजा हाफिज के ने दारा सिकंदर शत्रुता को कितने सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त किया है, माँ किस्सा ए सिकंदरो दारा न खांदा एम, अज माँ बजुज हिकायते महरोफवा मपुरश। तीन, अर्थात हमने सिकंदर और दारा का किस्सा नहीं पढ़ा है, हमसे प्रेम प्रीति की कहानी के अतिरिक्त और कुछ न पूछ। हिंदी सूफी कवि जायसी ने इस बैर का उल्लेख इस प्रकार किया है, नग पांचो देई देव भंडारा, इस कंदर सौ बाचे दारा। चार, एक, सर साइक्स पीए हिस्ट्री ऑफ पर्शिया भाग एक लंदन पृष्ठ 252-261। दो, दो सरहंगे गद्दार चू पीले मस्त, बरा पीलतन बर कुशादंद दस्त, जदंदश यके जख्मे पहलू गुजार, की अजखू जमी गश्त चू लाला जार। मौलाना निजामी, सिकंदर नामा, लखनऊ, सन 1876 ईस्वी, पृष्ठ 112। अर्थात उनके दो विश्वासघाती अंगरक्षकों ने मस्त हाथी की भांति हाथी जैसा शरीर रखने वाले दारा पर हाथ उठाया। उन्होंने दारा को भरपूर हाथ से एक ऐसा जिगर विदारक घाव लगाया कि रक्त से भूमि लालाजार के समान लाल हो गई। 3. दीवाने हाफिज मदबा ए मजीदी कानपुर पृष्ठ 242। 4. जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 240 पृष्ठ संख्या 653। दिरफशे कावयानी 1। जहाक के शासनकाल में इस्फहान में एक लुहार रहता था जिसका नाम कावा था। उसके 4 बच्चे जहाक के सांपों की नजर हो गए। जहाक के इस अत्याचार के कारण जनता के नाक में भी दम आ चुका था। अंततः घोर अत्याचारों को देखकर कावा के दिल में जोश पैदा हुआ। उसने अपनी दुकान बंद कर दी और अपनी धौंकनी को फाड़कर उसका झंडा बना लिया। 2. ईरानी देखते ही देखते उसके झंडे तले एकत्रित हो गए और जहाक से लोहा लेने के लिए कटिबद्ध हो गए। कावा इस सेना को लेकर आगे बढ़ा। जमशेद बादशाह के बेटे फरीदून अथवा फरीदून 3 ने भी उसका साथ दिया। उन्होंने जहाक की सेना के दांत खट्टे कर दिए। कावा की जीत का डंका समस्त ईरान में बज गया। कावा ने फरीदून को ईरान के सिंहासन पर बैठा दिया। तत्पश्चात यह झंडा ईरान में मांगलिक समझा जाने लगा। फरीदून बादशाह ने उसे राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया, उसे रत्न मणियों से जटित कर दिया। फरीदून के बाद भी ईरान के बादशाहों ने उसे अत्यधिक मान प्रदान किया। यज्द जिर्द तृतीय 4 के शासनकाल में वह झंडा प्रत्येक लड़ाई में सेना के आगे आगे होता था। हजरत उमर 5 के समय में यह झंडा मुसलमानों के हाथ आया, उसके रत्नों को बांट दिया गया और चमड़ा जलाकर भस्मीभूत कर दिया गया। 1. सुप्रसिद्ध झंडा जो दिरफ्श धौकनी से बनाया गया था। 2. सर साइक्स पी ए हिस्ट्री ऑफ पर्शिया भाग 1 लंदन सन 1951 ईस्वी पृष्ठ 135। 3. जमशेद बादशाह का बेटा जहाक जमशेद बादशाह का काम तमाम करके ईरान के सिंहासन पर बैठा था। 4. खुसरो परवेज का पौत्र यह सन 634 ईस्वी में ईरान के सिंहासन पर बैठा। वह सासानी वंश का अंतिम बादशाह था। 5. मुसलमानों के दूसरे खलीफा उनके शासनकाल में अरबों ने ईरानियों को पराजित किया। पृष्ठ संख्या 654। कुछ उदाहरण क निशाबाज जुस्त अजदिरफशे बलंद की मांद अस फरीदूने फिरोजमंद 1 अर्थात फिर सिकंदर ने उस ऊंचे झंडे दिरफशे कावयानी के ढब पर अपना झंडा बनाया जो विजयी फरीदून का स्मृति चिन्ह था। ख बसे बरतर अज कावयानी दिरफश ब मनजूक बरजद परिंदे बिनफश 2 अर्थात सिकंदर ने नीले रेशम का फरहरा झंडे पर लगाया और वह झंडा दिरफशे कावयानी से भी बढ़ चढ़कर था। ज़ुल्करनैन या सिकंदर प्रसिद्धि है कि ज़ुल्करनैन अत्यधिक प्रभावशाली बादशाह था जिसने पूर्व और पश्चिम की यात्रा की थी। ज़ू अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बाला, एक संबंध सूचक प्रत्यय, और कनैन भी अरबी भाषा का शब्द है जो कर्ण शब्द का द्विवचन है। कर्ण का अर्थ है सींग, कोना या किनारा। 10, 12, 30, 80 या 120 वर्ष का समय, गुण इत्यादि। अतः ज़ुल्करनैन का अर्थ हुआ दो सींगों वाला, दो कोनों पूर्व और पश्चिम में जाने वाला। 3, 2, 10 वर्षों अर्थात 20 वर्षों वाला, दो गुणों वाला इत्यादि। ज़ुल्करनैन का वर्णन कुरान में किया गया है, परंतु यह कौन था और कब हुआ इस पर प्रकाश नहीं डाला गया। 1. मौलाना निज़ामी सिकंदर नामा नवल किशोर प्रेस लखनऊ सन 1876 ईस्वी पृष्ठ 78। 2. वही पृष्ठ 87। 3. कुरान के अनुसार ज़ुल्करनैन पश्चिम में सूर्य के अस्त होने और पूर्व में उसके उदय होने के स्थानों पर पहुँचा। हमारे विचार से इसी कारण उसे ज़ुल्करनैन कहा गया। पृष्ठ संख्या 655। कुरान में ज़ुल्करनैन का उल्लेख संक्षेपतः इस प्रकार किया गया है। कुरान संख्या 12 83 101। ज़ुल्करनैन ने पूर्व और पश्चिम की यात्रा की। सर्वप्रथम उसने पश्चिम की ओर की यात्रा प्रारंभ की। चलते चलते जब वह सूर्य अस्त होने के स्थान पर पहुंचा, तो उसने सूर्य को कीचड़ के चश्मे में डूबते हुए पाया। वहां एक जाति रहती थी, उसको जुल्कनैन ने सदुपदेश दिया। तदनंतर वह पूर्व की ओर अग्रसर हुआ और चलते चलते सूर्य के उदय होने के स्थान पर पहुंचा। वहां ऐसे लोग रहते थे जो न तो घर बनाना जानते थे और न धूप से बचने के लिए किसी प्रकार का सामान रखते थे। फिर उसने एक और यात्रा शुरू की। आगे बढ़ते हुए वह एक पर्वत की घाटी पर पहुंचा। घाटी के इधर एक जाति रहती थी जो याजूज और मायूज की कौम से बहुत ही तंग थी। उन दुखी लोगों ने जुल्कनैन से कहा, हम धन संपत्ति एकत्रित करते हैं जिससे आप हमारे और उनके मध्य एक दीवार बनवा दें। जुल्कनैन ने उत्तर दिया, मेरे पास धन की तो कमी नहीं, केवल भुजबल की आवश्यकता है। यदि तुम मेरी सहायता करो तो मैं तुम्हारे और याजूज तथा मायूज के मध्य एक बहुत ऊंची और दृढ़ दीवार खड़ी करवा दूं। उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। जुल्कनैन ने लोहे की सिले इकट्ठी करने का आदेश दिया। उन्होंने देखते ही देखते अगणित सिले एकत्रित कर दी। फिर उसने दीवार बनवानी प्रारंभ कर दी। जब दीवार बन चुकी तो उसने उसे धोंकने के लिए कहा। उन्होंने धोंक धोंक कर दीवार को अंगारे की भांति लाल कर दिया। तत्पश्चात जुल्कनैन ने तांबा मंगवाया और उसको पिघलवा कर दीवार पर उड़ेल दिया, जिससे वह दीवार ऐसी पक्की हो गई कि याजूज और माजूज न तो उस पर चढ़ सकते थे और न ही उसमें छिद्र कर सकते थे। बहुमान्य मत है कि जुल्कनैन का नाम सिकंदर था, इसलिए उस दीवार को सद्दे सिकंदरी भी कहा जाता है। फारसी साहित्य में सद्दे सिकंदरी दृढ़ता का प्रतीक है। फारसी सूफी कवि ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार एवं मौलाना जामी ने पृष्ठ संख्या 656 जुल्कनैन को सिकंदर यूनानी एक समझा है, जो हजरत खिज्र के पथ प्रदर्शन में आबे हयात का पान करने गया था। दो, ख्वाजा फैदुद्दीन अत्तार लिखते हैं, रंजो मेहनत बस की जुल्कनैन बुर्द, जे इश्तियाके आबे हैवा हम बमुर्द। तीन, अर्थात जुल्कनैन ने अत्यधिक कष्ट सहन किए और आबे हयात पीकर अमृत तो प्राप्त करने की अभिलाषा में मर गया। मौलाना जामी कहते हैं, दर दीह जुलाले खिज्र की रफ्त आकी गुफ्त में, जुहद मरा असास चू सद्दे सिकंदरस्त। चार, अर्थात मुझे हजरत खिज्र का स्वच्छ पानी पिला दे, क्योंकि मेरा वह अहम भाव मर गया है जो कहा करता था कि मेरी परहेजगारी सिकंदर की दीवार की भांति सुदृढ़ है। कवि अपने गुरु से कहता है कि उसके अहम भाव का नाश हो गया है, अतः अब गुरु उसे वह अमृत बिंदु पिलाए जिससे कवि अमृत तो प्राप्त कर ले। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने जुल्कनैन के संबंध में इस प्रकार लिखा है, जुल्कनैन सिकंदर की एक अरबी उपाधि है जिसका अर्थ लोग भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं। कोई दो सिंह वाला अर्थ करते हैं और कहते हैं कि सिकंदर यूनानी यवन प्रथा के अनुसार दो सिंगों वाली टोपी पहनता था। एक, कई मुसलमान विद्वान किसी सिकंदर रूसी को जुल्कनैन समझते हैं, परंतु कोई तर्क प्रस्तुत नहीं करते, यथा काजी मोहम्मद सना उल्लाह पानीपत्ती, जिन्होंने कुरान की सविस्तार व्याख्या की है, लिखते हैं कि जुल्कनैन रूम का सिकंदर था, जो कबीस का पुत्र और फेलकूस का पौत्र था, परंतु विद्वान ने सिवाय नाम के और कुछ नहीं लिखा। तफसीरम जहरी जिल्द 6 दिल्ली पृष्ठ 62। दो, देखिए आबे हयात। तीन, मंती कुत्तैर नवल किशोर प्रेस लखनऊ पृष्ठ 49। चार, दीवाने जामी तेहरान चापखाना ए हैदरी पृष्ठ 36 पृष्ठ संख्या 657 पहनता था। कोई पूर्व और पश्चिम दोनों कोनों को जीतने वाला, कोई 20 वर्ष राज्य करने वाला और कोई दो उच्च ग्रहों से युक्त अर्थात भाग्यवान अर्थ करते हैं। एक, कवि जैसी जुल्कनैन को प्रभावशाली बादशाह मानते हुए अपने समकालीन बादशाह शेर शाह सूरी की उसके साथ तुलना करते हैं। तह लगी राज खड़ग करी लीन्हा, इसकंदर जुल्करन जुकीन्हा। दो, जरे या तिलाए दस्त अफशार। तीन, तराए जरीन। चार, तुरुजने जर। पाँच, प्रसिद्धि है कि ईरान के बादशाह कसरा 6 के कोषागार में एक प्रकार का कुंदन था जो बहुमूल्य और मोम के समान नर्म था। उसको दबाकर इच्छा अनुसार किसी भी रूप की वस्तु बनाई जा सकती थी। उसको दस्त अफशार इस कारण से कहते थे क्योंकि वह हाथ से दब जाता था। कसरा ने उसका तरह शाक बनवाया और अपने दस्तरखान पर सजाया। कसरा के पौत्र खुसरो परवेज 7 ने उस कुंदन का तरनूज लीमू बनवाया था। कहते हैं खुसरो परवेज उसे प्रायः अपने हाथ में रखा करता था। कवि उर्फी लिखते हैं, बूदम अस्कद्र तुरुंजे जरे परवेज तले गुए गश्तम बरहे सैले चोगा रफ्तम। 8 1 जैसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 5 टिप्पणी 13 2 वही पृष्ठ 5 3 जर सोना तिला सोना जर या तिला ए दस्त अफसार हाथ में या हाथ से मसला जाने वाला सोना। 4 सोने का शाख 5 सोने का लीमू 6 ईरान का न्यायशील बादशाह नौसीरवान अरब के लोग उसे कसरा कहते थे। 7 परम सुंदरी मलिका शीरी का पति। 8 कसायदे उर्फी नवल किशोर प्रेस लखनऊ पृष्ठ 43 पृष्ठ संख्या 658 अर्थात गुण के कारण मैं खुसरो परवेज का सोने का लीमू था परंतु मैं एक गेंद बन गया हूँ और बल्ले की चोटें सहन कर रहा हूँ। भाव यह है कि विद्वान एवं गुणी होने के कारण मैं दुखों को वहन कर रहा हूँ। दिलत अलमासे हिम्मत बूद गरवा बीनी अकननूश तुरनजे जरे दस्त अफसारे परवेजे जहाँ बीनी। 1 अर्थात तेरा दिल साहस का हीरा था परंतु यदि अब उसे खोलकर देखे तो उसे समय के परवेश के हाथों में मसला जाने वाला सोने का लीमू पाएगा। भाव यह है कि कवि की कविता सुनकर पत्थर दिल भी मोम की भांति नर्म हो गए हैं। 7 समुद्र 2 फारसी साहित्य में समुद्रों की संख्या 7 मानी जाती है। सूफियों ने भी समुद्रों की संख्या 7 लिखी है। वस्तुतः 7 समुद्र उनकी 7 मंजिलों के प्रतीक हैं। अतः फारसी और हिंदी सूफी कवियों ने 7 समुद्रों का उल्लेख किया है। ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार कहते हैं, हर किरा उ हस्त गुल उरा बवद हफ्त दरिया जेर पुल उरा बवद। 3 अर्थात जो उस खुदा का कृपा पात्र है फूल उसी के लिए हैं। 1 वही पृष्ठ 76 2 मुसलमानों के नज़दीक 7 समुंदर से मुराद बुहेरा शाम बुहेरा कुलजुम बुहेरा अरब बुहेरा ओमान बुहेरा फारस और बुहेरा अजवद हैं। मगर हिंदुओं के 7 समुंदरों में से एक समुंदर नमक का दूसरा दूध का तीसरा घी का चौथा दही का पांचवा शराब का छठा गन्ने के रस का और सातवां शहद का है। मौलाना वहीदुद्दीन सलीम इफादात सलीम हैदराबाद पृष्ठ 164 3 मंतिक उत्तर नवल किशोर प्रेस लखनऊ पृष्ठ 211 पृष्ठ संख्या 659 और सातों समुद्र पुल के नीचे उसी के लिए हैं। भाव यह है कि परमात्मा साधकों की सहायता करता है और अपने फजल कृपा से उनके लिए सातों समुद्रों पर पुल बना देता है। जिस साधक पर प्रभु की कृपा होती है वह 7 मंजिलें पार कर जाता है। कवि जायसी लिखते हैं, खार खीर दधि जल उदधि सुर किलकिला अकूत को चढ़ी नांगे समुद ए है काकर असबूत। 1 कवि मंझन कहते हैं, शेख मुहम्मद पीरु अपारा सात समुंद नाउ कंडहारा। 2 सदह सदा सदह आग को कहते हैं। जमशेद ने सर्वप्रथम पत्थर से आग निकलती देखी तो उसने इस खुशी में एक जश्न उत्सव का आयोजन किया। यह जश्न जश्न सदह अथवा सदा के नाम से प्रसिद्ध है और आज भी बहमन 3 मास की 10 तारीख को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कवि फर्रुखी ने इस जश्न का उल्लेख करते हुए लिखा है, रोशनी दर आसमा जी आतिशे जश्ने सदह अस्त कज सराय ख्वाजा बागर्दू हमी हमसर संवद। 4 मंत्री के घर में जश्न मनाया जा रहा है। अग्नि का प्रकाश आकाश को प्रकाशित कर रहा है। कवि कहता है कि जश्ने सदह की आग से आकाश में रोशनी है जो ख्वाजा के मकान से आसमान की बराबरी कर रही है। 1 जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 59 2 मंझन कृत मधुमालती संपादक डॉ. माता प्रसाद गुप्त इलाहाबाद सन 1961 ईस्वी पृष्ठ 14 3 यह मास अंग्रेजी मास जनवरी के मुताबिक आता है। इन दिनों ईरान में जाड़ा पूरे जोरों पर होता है। 4 कसायदे फर्रुखी लाहौर मुबारक अली पृष्ठ 53 पृष्ठ संख्या 660 समंदर 1 आतिशदानी 2 में एक जीव छिपकली की आकृति का उत्पन्न हो जाता है जो अपना जीवन निर्वाह अग्नि से करता है। इसको समंदर समंदिर समंदूर समंदल या समंदूर कहते हैं। डॉक्टर स्टेनगास के विचारानुसार यह शब्द साम अग्नि और अंदरू भीतर से बना है। 3 प्रसिद्धि है कि जिस स्थान पर निरंतर 1,000 वर्ष तक अग्नि जलती रहे, वहां यह पैदा हो जाता है। यदि यह अग्नि से बाहर निकले तो तुरंत मर जाता है। मौलाना निजामी लिखते हैं, समंदर चू परवाना आतिश दोस्त, वलेक ई कुहन लंगो आँख खुश रोस्त। 4, अर्थात यूं तो समंदर भी परवाने के समान आग में दौड़ा फिरता है, परंतु जहाँ यह परवाना द्रुतगामी है वहाँ यह समंदर लूला लंगड़ा है। कवि का भाव यह है कि सांसारिक प्रपंचों से मुक्त होने के लिए हमें शलभ की भांति तेजी से काम लेना चाहिए, न कि समंदर के समान सुस्ती से। कहते हैं कि ईरानी इस जीव के चमड़े के रुमाल बनाया करते थे। जब वे मैले हो जाते थे तो उन्हें आग में डालकर साफ कर लिया जाता था। सोजने ईसा। 5, हजरत ईसा की गणना अत्यधिक प्रभावशाली पैगंबरों में से होती है। ईसाई उन्हीं की निस्बत से ईसाई कहलाते हैं। 1, अग्निकीट। 2, अग्निशाला। 3, डॉक्टर स्टेनगास एफ, पर्शियन इंग्लिश डिक्शनरी, लंदन, सन 1930 ईस्वी, पृष्ठ 697। 4, सिकंदर नामा, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, सन 1876 ईस्वी, पृष्ठ 117। 5, हजरत ईसा की सुई, कुरान में इनके 4 चमत्कार दिए हुए हैं। कुरान में उन्हें मसीहा और पृष्ठ संख्या 661 अब्दुल्लाह के लकब से याद किया गया है। वे हजरत मरियम के गर्भ से उत्पन्न हुए। कवि प्रसिद्धि के अनुसार हजरत मरियम इस्मत, सतीत्व एवं इफ्फत, संयम की प्रतीक हैं। यहूदियों 1 ने हजरत ईसा को सूली पर चढ़ाया, परंतु खुदा ने उन्हें जीवित ही उठा लिया। कहते हैं कि आसमानों पर चढ़ते समय एक सोजन सुई उनके परिधान में अटकी रह गई। यह एक सांसारिक वस्तु थी, इसलिए खुदा ने हजरत ईसा को चौथे आकाश से आगे जाने की अनुमति न दी। कवि प्रशस्ति है कि हजरत ईसा अभी तक चौथे आकाश पर स्थित हैं। उदाहरण क, सोजने चू दीद बा ईसा बहम, बखिया बर रुएश फगंद उ लार्जर्म। 2, अर्थात उस खुदा ने जब हजरत ईसा के साथ सुई देखी तो वह बहुत क्रुद्ध हुआ। ख, बर फलक ताबद मसीहा रिश्ता ए जुन्नारे मा, बर जमी मंसूर अफराजर सुतूने दारे मा। 3, अर्थात ईसा, चौथे आकाश पर हमारे लिए जनेऊ के धागे बट रहा है और मंसूर भूमि पर हमारे लिए फांसी का स्तंभ खड़ा कर रहा है। शब चिराग। प्रसिद्धि है कि शब चिराग एक प्रकार की मणि है। 4, 1, हजरत मूसा की उम्मत के व्यक्ति। 2, ख्वाजा फैदुद्दीन अत्तार, मंती कुत्तर, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, पृष्ठ 3। 3, नजीरी गजलियाते नजीरी, लाहौर, मुबारक अली, सन 1923 ईस्वी, पृष्ठ 56। 4, सांप की मणि के संबंध में भी प्रसिद्धि है कि जब सांप खुश होता है तो वह एक उज्जवल मणि मुंह से बाहर निकालकर जंगल में रख देता है और उसकी आभा में फिरता रहता है। प्रसिद्धि है कि जिस किसी के पास सांप की मणि हो वह सब दुखों से सुरक्षित रहता है, न आग उसे जला सकती है और न पानी उसे डुबो सकता है। पृष्ठ संख्या 662। दरियाए गायें रात्रि के समय चरने निकलती हैं तो उस मणि को मुंह से निकालकर भूमि पर रख देती हैं और उसकी आभा में चरती रहती हैं। चर चुकने के अनंतर उसको पुनः अपने मुंह में रखकर डुबकी लगा जाती हैं। कवि उर्फी के एक आश्रयदाता का देहांत हो गया तो वह दूसरे की शरण में चला गया। कवि लिखता है कि एक मणि मुझसे छिन गई, परंतु वैसी ही अन्य मणि मुझे मिल गई। मन आगहम की गर आ शब चिराग घूम करदम, की गौहरम बतलाफी ये आ जिया आमद। 1, अर्थात मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ कि यदि शब चिराग मणि मेरे पास से गुम हो गई तो क्षतिपूर्ति के लिए मुझे वैसी ही मणि मिल गई। शराब। फारसी साहित्य में यह प्रसिद्ध है कि शराब के द्वारा दुखों से छुटकारा मिल सकता है, इसलिए फारसी कवियों ने मदिरा पान को चिंताओं को दूर करने का एक साधन माना है। उन्होंने इस कवि समय का व्यवहार जी खोलकर किया है। उमर खयाम और हाफिज को तो यह कवि प्रशस्ति बहुत प्रिय है। हंगामे तंग दस्ती दर बादा कोशो मस्ती, की कीमिया ए हस्ती कारू कुनद गदारा। 2, अर्थात निर्धनता में शराब पी और मस्त हो जा, क्योंकि यह वस्तु जीवन की वह इक्सीर रसायन है जो भिक्षुकों को कारू तीन बना देती है। सूफियों ने शराब को अलौकिक प्रेम का प्रतीक माना है। एक कसायदे उर्फी नवल किशोर प्रेस लखनऊ पृष्ठ 212। दो दीवाने हाफिज मतबाए मजीदी कानपुर पृष्ठ 4। तीन कारून के पास असंख्य धन था, उसके खजानों की कुंजियां ही 40 ऊंटों पर लादी जाती थीं। यदि उक्त शेर में बादा शराब को प्रतीक के रूप में समझें तो इसका अर्थ इस पृष्ठ संख्या 663 प्रकार होगा कि जो दुखी साधक अलौकिक प्रेम सुरा को पी लेता है वह सुखी हो जाता है। कवि नूर मोहम्मद लिखते हैं, एक पियाला हाला पावऊं त्रासही छाड़ी के होरी गावऊं। एक भारतीय साहित्य में संगीत तथा वीणा वादन को चिंताओं आदि को मिटाने का एक साधन समझा गया है। इसी कवि समय के आधार पर कवि मलिक मोहम्मद जायसी लिखते हैं, पद्मावती तेहि जोग संजोगी परि प्रेम बस गहे वियोगी गहे बीन मकुरैनी बिहाई ससि बाहन तह रह ओनाई। दो शक्कुल कमर। तीन प्रसिद्धि है कि हजरत मोहम्मद ने चांद के दो टुकड़े कर दिए थे। मक्का के काफिरों ने हजरत मोहम्मद से कहा कि भूमि पर तो आप चमत्कार दिखाकर हमें चकित कर देते हैं, परंतु जब आप आकाश पर कोई महत्वपूर्ण कार्य करके दिखाएंगे तो हम आपकी अलौकिक शक्ति का सिक्का मान जाएंगे। हजरत मोहम्मद ने फरमाया, अच्छा यही बात है तो तुम ही बताओ कि कैसा चमत्कार करके दिखाऊं। एक काफिर बोला कि चांद के दो टुकड़े कर दिखाओ। यह सुनकर उन्होंने खुदा का नाम लेकर चांद की ओर उंगली से इशारा किया। देखते ही देखते चांद के दो टुकड़े हो गए। आपके इस मोजीजा 4 को शक्कुल कमर कहते हैं। एक नूर मोहम्मद इंद्रावती पहला भाग पृष्ठ 33। दो जैसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 73। तीन चांद का टुकड़े होना। 4 चमत्कार पृष्ठ संख्या 664। उदाहरण, माह अज अंगुष्टे उ बशी गाफ्ता मेहर दर फरमानश अज पस ताफ्ता। एक अर्थात चांद उनकी उंगली के इशारे से दो टुकड़े हो गया और सूर्य आपकी आज्ञा से वापस लौट गया। हिंदी सूफी कवि मंजन ने हजरत मोहम्मद के सुप्रसिद्ध चमत्कार की ओर संकेत करते हुए लिखा है, वाकी अंगुरी करी कै अज्ञा चांद भयो दुईखंड वाकी धुरी जो पायन लागी अचल भयो ब्रह्मांड। दो शमा। तीन और परवाना दीपक और पतंगा। प्रसिद्धि है कि पतंगा दीपक पर उड़ के जाता है और भस्मीभूत हो जाता है। 4 प्रोफेसर राम पूजन तिवारी के शब्दों में फारसी काव्य में बुलबुल गुलाब शमा परवाना आदि शब्द परंपरा भुक्त और रूढ़ी जैसे हो गए हैं। जब कवि शमा की चर्चा करता है तो परवाना वहां आएगा ही। पाठक या सुनने वाले इसके लिए पहले से ही तैयार रहते हैं। 5 एक ख्वाजा फैदुद्दीन अत्तार मंती कुत्तर नवल किशोर प्रेस लखनऊ पृष्ठ 19। दो मंजन कृत मधुमालती संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इलाहाबाद सन 1961 ईस्वी पृष्ठ 8। तीन शमा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मोम, फिर मोमबत्ती को कहने लगे। ईरान में आकर शमा चर्बी की भी बनने लगी, परंतु नाम शमा ही रहा। भारतवर्ष में चर्बी को नापाक अपवित्र समझा जाता है, इसलिए न शमा थी न उसका नाम था। 4 वस्तुतः पतंगा प्रकाश की ओर जाता है, वह अंधकार में आलोक की ओर उड़ान भरता है। 5 प्रोफेसर राम पूजन तिवारी हिंदी सूफी काव्य की भूमिका पटना सन 1960 ईस्वी पृष्ठ 20 पृष्ठ संख्या 665। ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार कवि समय के अनुरूप पतंगे और दीपक का प्रेम दर्शाते हुए लिखते हैं, ए शफात खाह मुश्ते तीरा रोज लुत्फ कुन शमा ए शफात बरफरोज ताचू परवाना मियाने जमा ए तू पर जना आयम ब पेशे शमा ए तू। एक अर्थात प्रभु के सम्मुख मेरे पक्ष में प्रार्थना करने वाले ए मोहम्मद, मेरे अंधेरे दिनों में अपने कृपा की शमा जलाकर उजाला कर दीजिए, ताकि आपकी सभा में अपने पर मारता हुआ आपकी शमा के समक्ष जलने को आऊं। शेख सादी कहते हैं, ए मुर्गे सहर इश्क जे परवाना बयामोज का सोखता राजा शुदा आवाज नयायद। दो अर्थात ए बुलबुल प्रेम करना परवाने से सीख, उस दिल जले की जान चली गई परंतु आवाज न आई ख्वाजा हाफिज कहते हैं, शमा ओ गुलो परवाना ओ बुलबुल हमा जमा अंध, ए दोस्त बिया रहम ब तन्हाई ए मा कुन। तीन, अर्थात शमा और परवाना तथा गुल, पुष्प एवं बुलबुल सब साथ साथ हैं, परंतु हम एकाकी हैं। ए दोस्त प्रिय, आ हमारे अकेलेपन का ध्यान करके हम पर कृपा कर। हिंदी सूफी कवियों ने भी पतंगे और दीपक के प्रेम विषयक कवि प्रसिद्धि को अपनाया है। एक, मंतिक उत्तर, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, पृष्ठ 22-23। दो, गुलिस्तान मुतरजम, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, सन 1954 ईस्वी, पृष्ठ 5। तीन, दीवाने हाफिज मदबा ए मजीदी, कानपुर, पृष्ठ 347, पृष्ठ संख्या 666। कवि जायसी कहते हैं, क ना वह भयो भौर कर रंगू, ना वह दीपक भयो पतंगू। एक, कवि मंझन लिखते हैं, ख मांग स्वरूप देखी जीव हरा, दीप पतंग ज्योति जनुपरा। दो, शमा ए तर। तीन, कहते हैं कि जब हजरत मूसा मदयन शहर से स्वदेश मिस्र को जाने लगे तो उन्हें सीना 4 नामक वन में तूर पर्वत पर ज्योति दृष्टिगोचर हुई। उस समय तीव्र गति से आंधी चल रही थी। ज्योति को देखकर हजरत मूसा चकित हो गए। वे ज्योति के रहस्य को जानने के लिए पर्वत की ओर गए। उन्होंने देखा कि पर्वत पर एक हरे भरे वृक्ष में आग लगी हुई है। जब उस वृक्ष के समीप पहुंचे तो आवाज आई, अना रब्बुक या मूसा, ए मूसा मैं तेरा खुदा हूँ। आप हैरान होकर इधर उधर देखने लगे। जब और कुछ दृष्टिगत ना हुआ तो कहने लगे, अरिनी मुझे अपना आप दिखा। परंतु आगे से उत्तर मिला, लन तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता। फिर भी हजरत मूसा ने आग्रह किया। तदनंतर खुदा ने हजरत मूसा को अपना अलौकिक प्रकाश दिखलाया, जिसको देखते ही वे अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। पर्वत कांप उठा, बल्कि जल कर श्याम वर्ण हो गया। तजली ए तूर, तूर की झलक, शोला ए तूर, तूर की अग्नि ज्वाला, नखले तूर, तूर का पेड़, शमा ए तूर, तूर का दीपक, शजरे तूर, तूर का वृक्ष, नखले मूसा, मूसा का पेड़, जलवा ए तूर, तूर की छवि, नखले एमन, एमन घाटी का विटप, शमा ए एमन, वादी ए एमन, एमन घाटी, नूरे सीना, वादी ए सीना। एक, जायसी ग्रंथावली पद्मावत, पृष्ठ 99। दो, मंझन कृत मधुमालती, संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, इलाहाबाद, सन 1961 ईस्वी, पृष्ठ 64। तीन, शमा ए तूर का अर्थ है नूरे खुदाबंदी अर्थात दिव्य प्रकाश। चार, सीना के बियावान को बियावाने तीह भी कहते हैं। शोला ए, पृष्ठ संख्या 667, सीना, तूर ए सीना, सुरमा ए तूर, रब्बे अरिनी, लन तरानी, खुर्र मूसा मूसा, अचेत होकर गिर पड़े इत्यादि भी उक्त घटना की ओर संकेत करते हैं। इनका प्रयोग कवियों ने बार बार किया है। मूसीचा नामक पक्षी की प्रशंसा में ख्वाजा फैदुद्दीन अत्तार लिखते हैं, हमछ मूसा दीदाई आतिश जे दूर। एक, अर्थात हे पक्षी, तूने भी हजरत मूसा के समान तूर पर्वत पर आग देखी है। शेख सादी ने हजरत मूसा के शब्द अरिनी, मुझे अपना आप दिखा के आधार पर इस प्रकार लिखा है, बर दरगहे की नौबते अरिनी हमी जनंद, मोरे न ई ओ मुल्के सुलेमानत आरजूस्त। दो, हे साधक, उस स्थान पर जहां अरिनी, हे खुदा मुझे अपना आप दिखा की घोषणा की जाती है, तू एक चींटी के बराबर भी नहीं, परंतु फिर भी तुझे हजरत सुलेमान का राज्य प्राप्त करने की अभिलाषा है। अर्थात साधना के मार्ग में अपनी हिम्मत से बढ़कर डींग मारना उचित नहीं। खुदा से बातचीत करने के कारण हजरत मूसा को कलीमुल्लाह, अल्लाह से वार्तालाप करने वाला भी कहते हैं। यह उनका लकब 4 है। एक, मंतिक उत्तर, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, पृष्ठ 37। दो, शेख सादी मवाइजे सादी, तेहरान, 1320, पृष्ठ 119। तीन, पशु पक्षी देव दानव मानव आदि सभी हजरत सुलेमान के वंश में थे। एक बार जब वे चींटियों की घाटी में से गुजरे तो उन्होंने एक दावत भोज का आयोजन किया। प्रत्येक पशु ने भी यथा सामर्थ्य सहायता की। चींटियों की रानी ने भी टिड्डी की एक टांग भेंट की। चींटी को नम्रता का प्रतीक माना जाता है। चार, उपाधि, मौलाना जामी लिखते हैं, पृष्ठ संख्या 668, कलीम अजमशले उशोला जुए। एक, अर्थात कलीमुल्ला, हजरत मूसा, उसकी मशाल, प्रकाश से लौ को ढूंढता है। तूफाने दो नूह या कश्ती नूह। हजरत नूह की कौम मूर्ति पूजक थी। उन्होंने अपनी कौम को एक प्रभु की आराधना का उपदेश दिया। केवल 82 व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई भी उनसे सहमत न हुआ, किंतु उन्हें बहुत तंग किया। अंततः खुदा ने विरोधियों पर अजाब नाजिल किया। 3 प्रभु की आज्ञा अनुसार एक तनूर में से पानी फूट निकला। 4 मूसलाधार वर्षा हुई, जल थल एक हो गया। उन्होंने एक बड़ी सी नौका पहले ही तैयार कर ली थी, जिसमें उन्होंने अपने 82 साथियों को बैठा दिया और साथ ही उसमें प्रत्येक जीव का जोड़ा भी रख लिया। नौका पानी पर तैरने लगी, वृक्षों और टीलों पर पानी फिर गया और सब विरोधी डूब गए। हजरत नूह का बेटा कानान पिता के बार बार कहने पर भी नाव में न बैठा। उसे भी एक प्रचंड तरंग बहा ले गई। जल प्लावन कम होने पर नौका जूदी पर्वत पर जा लगी। सृष्टि नए सिरे से बढ़ने लगी। मानव जाति का विकास पुनः हुआ, इसलिए हजरत नूह को आदमे सानी अर्थात द्वितीय आदम भी कहते हैं। 1 यूसुफ जुलेखा, नवल किशोर प्रेस, कानपुर, सन 1314 हिजरी, पृष्ठ 14। 2 जल प्लावन, संसार का जल मग्न हो जाना। सभी धर्मों में जल प्लावन की बात किसी न किसी रूप में मिलती है। 3 कष्ट पहुंचाया। 4 वज तनूरे आबुर्द तूफा पदीद, अत्तार मंती कुत्तर, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, पृष्ठ 3। अर्थात खुदा तनूर से तूफान प्रकट करता है। पृष्ठ संख्या 669। ख्वाजा हाफिज लिखते हैं, हाफिज अजदस्त मदिह सुहबते आ कश्ती ए नूह, वरना तूफाने हवादिश बबूरत बुनियादत। 1 अर्थात ए हाफिज, नूह की नौका का साथ मत छोड़, अन्यथा दुर्घटनाओं का तूफान तुझे नष्ट भ्रष्ट कर देगा। जल प्लावन का उल्लेख करते हुए जायसी ने लिखा है, नूह कही न जब परलय आवा, सब जग बूढ़ रहूं छड़ी नावा। 2 अनासिरे अरबा या चार तत्व। इस्लाम धर्म में केवल 4 तत्वों से सृष्टि मानी जाती है। इसमें यूनानी दर्शन की भांति आकाश तत्व की विवेचना नहीं हुई। फारसी और हिंदी सूफी कवियों ने 5 के स्थान पर 4 तत्वों को माना है। ख्वाजा फैदुद्दीन अत्तार 4 तत्वों का उल्लेख इस प्रकार करते हैं, बादो खाको आतिशो आब आवरद, सिर खेश अज जुमला बेरू आवरद। 3 अर्थात वह खुदा वायु, मिट्टी, अग्नि और जल को पैदा करता है और अपने रहस्यों को प्रकट करता है। मौलाना जामी 4 तत्वों के संबंध में कहते हैं, फराजे 4 दीवारे अनासिर। 4 अर्थात वह खुदा तत्वों की 4 दीवारों को खड़ा करने वाला है। हिंदी के सूफी कवियों ने भी क्षिति, जल, पावक और समीर इन्हीं 4 तत्वों की चर्चा की है। 1 दीवाने हाफिज मदबाए मजीदी कानपुर, पृष्ठ 60। 2 जैसी ग्रंथावली आखिरी कलाम, पृष्ठ 352। 3 मंती कुत्तर, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, पृष्ठ 4। 4 यूसुफ जुलेखा, नवल किशोर प्रेस, सन 1896 ईस्वी, पृष्ठ 6। पृष्ठ संख्या 670। कुछ उदाहरण। क कीन्हे सी अग्नि पवन जल खेहा, कीन्हे सी बहुरे रंग उरेहा। 1 ख अग्नि पवन रज पानी के, भांति भांति व्यवहार, आप रहा सब माहि मिली, को निवरावे पार। 2 तत्वों की उत्पत्ति के क्रम का वर्णन केवल कवि नूर मोहम्मद और निसार ने किया है और उन दोनों के क्रम में साम्य भी है। तैतरीयोपनिषद में वर्णित सृष्टि क्रम में और इस्लामी पद्धति से वर्णित क्रम में अंतर है। उपनिषद के अनुसार परमात्म तत्व से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी संभूत हुई। 3 कवि नूर मोहम्मद के अनुसार परम ज्योति से पहले आग उत्पन्न हुई, आग से पवन, पवन से जल और जल से फिर पृथ्वी उत्पन्न हुई। जाति सो आग, आग से बाउ, भयो पवन सो नीर बनाओ, भयो नीर सो माटी, चारों से भय देह, देह और यह जीव सो बाढ़ी बहुत स्नेह। 4 कवि निसार यूसुफ जुलेखा में इन तत्वों की क्रमिक उत्पत्ति के विषय में इस प्रकार लिखते हैं कि सबसे पहले अग्नि, अग्नि से पवन, पवन से पानी, पानी से फिर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इन्हीं 4 तत्वों से धरती, स्वर्ग, सूर्य, शशि और तारागण सभी की उत्पत्ति हुई। आगिन ते पवन, पवन ते पानी, पुनि पानी ते खेह उड़ानी, यही सब में उपज्यो संसारा, धरती सरग सूर शशि तारा। 5.1 जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 1। 2 उस्मान चित्रावली काशी नागरी पिचारणी सभा काशी सन 1912 ईस्वी पृष्ठ 1। 3 तैतरीयोपनिषद 2.1। 4 इंद्रावती काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी सन 1906 ईस्वी पृष्ठ 70। 5 कवि निशाकृत यूसुफ जुलेखा आदि खंड छंद 1 पृष्ठ संख्या 671। अनका प्रसिद्ध है कि वह एक विशालकाय लंबी ग्रीवा का शक्तिशाली पक्षी था। उसका चेहरा आदमी जैसा तथा चार पांव और कई रंगों के पंख थे। वह बच्चों को उठाकर ले जाता था और उन्हें बड़ी रुचि से खाया करता था। लोगों ने तंग आकर तत्कालीन पैगंबर हैतला के सामने अपना दुखड़ा रोया। उनकी दुआ से पक्षी अगोचर हो गया। कहते हैं कि आजकल वह किसी द्वीप में रहता है और हाथी एवं अजगर का शिकार करके अपने जीवन का निर्वाह करता है। फारसी में अनका शुदन एक मुहावरा प्रचलित है जिसका अर्थ है गुम होना, छिप जाना, ओझल होना। ख्वाजा हाफिज इस पक्षी के विषय में लिखते हैं, अनका शिकारे कस नश्वद दाम बाज ची एक, अर्थात हे व्याध, अनका किसी का शिकार नहीं होता, तू अपना जाल उठा ले। गोल, गोल को छलावा कहते हैं। प्रसिद्धि है कि गोल एक प्रकार का जिन दो या देव है जो वनों पर्वतों या बियावानों में रहता है। वह जो भी रूप चाहे धारण कर सकता है। वह बटोहियों को बहकाता है, झटकाता है और लूट लेता है या प्राण हर लेता है। उदाहरण, चे बंदेम दिल दर जहां सालो माह की हम देव खाना अस्तो हम घोले राह। 3.1 दीवान हाफिज मदबाए मजीदी कानपुर पृष्ठ 9। 2 प्रेत। 3 मौलाना निजामी सिकंदर नामा नवल किशोर प्रेस लखनऊ सन 1876 ईस्वी पृष्ठ 79 पृष्ठ संख्या 672। अर्थात हम दुनिया से महीनों और बरसों दिल किस लिए लगाएं, क्योंकि यह दुनिया घरों में रहने वाला जिन भी है और पथ भ्रष्ट करने वाला छलावा भी। ई गोले रूप बस्ता कोतह नजर फरेब दिल में बुरद बगालियां अंदूद चादरी। 1 अर्थात यह दुनिया एक छलावा है जिसने अपना मुंह छिपा रखा है और जो बेसमझ लोगों को धोखा देता फिरता है। यह छलावा अपनी सुगंधित चादर के कारण हमारे दिल से उड़ता है। दूरस्त सरे आज दरी बादिया होशदार ताहोले बिहावान न फरेबत बसराबत। 2 अर्थात इस जंगल में पानी का किनारा दूर है, होश रख, ऐसा न हो कहीं वन का छलावा तुझे मृग तृष्णा से धोखा दे दे। ककनूस मूसीकार कवि प्रसिद्धि है कि इस पक्षी के स्वर से मूसीकी गान विद्या का प्रारंभ हुआ। यह प्रत्येक प्रकार का राग गाता है। इसकी चोंच में अनेक छिद्र होते हैं जिनमें से स्वर लहरियां निकलती हैं। इसका युग्म नहीं होता। इसकी आयु प्रायः 1000 वर्ष होती है। जब यह मरणासन्न होता है तो यह सूखी लकड़ियां एकत्रित करके उन पर बैठकर दीपक राख गाता है और जलकर राख हो जाता है। फिर उस राख पर अब्रे बहार बहार का बादल बरसता है तो राख में से अंडा उत्पन्न होता है और उसमें से यह पक्षी पुनः जन्म लेता है। इस प्रकार यह क्रम निरंतर चलता रहता है। ख्वाजा फैदुद्दीन अत्तार ने 1 शेख सादी मवाइजे सादी तेहरान सन 1320 ईस्वी पृष्ठ 75। 2 दीवाने हाफिज मदबाई मजीदी कानपुर पृष्ठ 37। मंतिक उत्तर में हिकायते ककनूस व पृष्ठ संख्या 673। दराजी ये उम्र व अहलवाले ऊ 1 में इस पक्षी पर प्रकाश डाला है। कुछ शेर देखिए, हस्त ककनूस तुरफा मुर्गे दिल सता मौजा ए ई मुर्ग दर हिंदोस्ता सख्त मिनकारे अजब दारत दराज हकचू ने हमचू ने दर वे बसे सुराख बाज करबू सद सुराख दर मिनकारे उस्त निस्त जुफ्तस्ता कबूदन कारे उस्त फैल सुफे बूद दम साजश गिरफ्त इल्मे मूसीकी जे आवाजश गिरफ्त। 2 अर्थात ककनूस संसार में एक अद्भुत पक्षी है। इसका निवास स्थान भारत वर्ष में है। उसकी सख्त और लंबी चोंच होती है और उसमें बांसुरी की भांति बहुत से छिद्र होते हैं। उसकी चोंच में प्रायः 1000 छेद होते हैं और उसका जोड़ा नहीं होता। एक मनीषी उसका मित्र बन गया। उसने उसकी स्वर लहरियों से राग विद्या सीखी इत्यादि। जायसी ने इस पक्षी से रत्नसेन की उपमा देते हुए लिखा है, ककनु पंखी जैस सर साजा, तस सर साजी जरा चह राजा। 3, कुम बाइजनी 4, या दमे ईसा 5, मुर्गे ईसा 6, मुर्गे मसीहा 7, चमगादड़। हजरत ईसा अत्यधिक प्रभावशाली पैगंबर थे। 1, ककनूस, उसकी दीर्घ आयु और उसके जीवन वृत्तांत के विषय में कथा। 2, मंतिक उत्तर, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, पृष्ठ 151-52। 3, जायसी ग्रंथावली, पद्मावत, पृष्ठ 88। 4, मेरे आदेश से खड़े हो जाओ। 5, ईसा का श्वास। 6, ईसा का पक्षी। 7, मसीहा, ईसा का पक्षी। कुरान में हजरत ईसा को मसीहा और अब्दुल्लाह के लकब से याद किया गया है। वे कुम बैजनी कह, पृष्ठ संख्या 674 कर मृत व्यक्तियों को जीवित कर देते थे। इस चमत्कार का वर्णन काव्य में दमे ईसा, एजाजे ईसवी, एजाजे मसीहा, कुम बैजनी के शब्दों से किया जाता है। प्रसिद्धि है कि हजरत ईसा मिट्टी के पक्षी बनाकर उनमें आत्मा का संचार करते थे और उनको उड़ा दिया करते थे। चमगादड़ इसी चमत्कार का परिणाम है। 1, रोगियों को स्वस्थ करना भी हजरत ईसा का चमत्कार था। इसकी चर्चा भी फारसी कविता में जी खोलकर की गई है। ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार लिखते हैं, अस दमे ईसा कसे गर जिंदा खास्त, उ बदम दस्ते बुरीदा दर्द रास्त। 2, अर्थात हजरत ईसा के दम 3 से मृत व्यक्ति जीवित हो जाता था। वे पल भर में कटे हुए हाथ को भी ठीक कर देते थे। मौलाना जामी की गजल का एक शेर देखिए, हर जा नफसे मी गुजरत जा लबे शीरी, आ जा चे मजाले दमे जा परवरे ईसा अस्त। 4, अर्थात जिस स्थान पर मेरे मनोहर प्रियतम के मधुर होंठ से सांस गुजर जाता है, वहां हजरत ईसा के जीवन दाता श्वास को जाने का साहस नहीं होता। मलिक मोहम्मद जायसी आखिरी कलाम में लिखते हैं, ईसा कहिन की कस ना कहत्यों, जो किछु कहे क उतर पवत्यों, मैं मुए मानस बहुत जियावा, और बहुते जीवदान दियावा। 5, 1, मौलाना वहीदुद्दीन सलीम पानीपत्ती, इफादाते सलीम, हैदराबाद, पृष्ठ 138, मौलवी अब्दुल मजीद अजीबो गरीब, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, सन 1930 ईस्वी, पृष्ठ 357। 2, मंतिक उत्तर, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, पृष्ठ 27। 3, जीवन प्रदान करने वाला श्वास। 4, दीवाने जामी, तेहरान, चापखाना ए हैदरी, पृष्ठ 43। 5, जायसी ग्रंथावली, आखिरी कलाम, पृष्ठ 352, पृष्ठ संख्या 375। कमाने रुस्तम। 1, कैसे कौसे कुजह अर्थात इंद्रधनुष को कमाने रुस्तम कहते हैं। अली अनवरी लिखते हैं, जाला सिपरे बर्फ बबूरद अस कतिफे कोह, चू रुस्तमे नैसा नजम आबुरद कमाराम। 2, अर्थात जब नैसान 3 का रुस्तम अपने कमान पर चिल्ला चढ़ाता है तो ओले पहाड़ के कंधे से बर्फ की ढाल को उड़ा ले जाते हैं। कौसे कुजह इंद्रधनुष को रुस्तमे नौसान की कमान कहा गया है। जब इस कमान से तीर छूटते हैं तो पहाड़ अपनी ढाल तक खो बैठता है और इस ढाल को छीनने वाले ओले होते हैं। अभिप्राय यह है कि नैसान के महीने में ओलों की बारिश से पहाड़ पर बर्फ पिघलने लगती है या ओलों के साथ टकराने से उड़ जाती है। कुन, हो जा, कुन के कहने से किया आलम बपा। 4, प्रसिद्धि है कि ईश्वर के कुन शब्द कहने मात्र से सृष्टि की रचना हुई थी। उदाहरण, कर्द दर शश रोज हफत अंजुम पदीद, वस दो हर्फ आबुर्द नुफ्र तारम पदीद। 5, 1, ईरान देश का सुप्रसिद्ध योद्धा, उसे बहादुरी का प्रतीक माना जाता है। कमाने रुस्तम, रुस्तम की कमान। 2, आईना ए दानिश, संपादक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, लाहौर, सन 1946 ईस्वी, पृष्ठ 231। 3, शाम देश के कैलेंडर का मास, जो अंग्रेजी मास अप्रैल के मुताबिक होता है, इस महीने में जो कुछ कुछ वर्षा हो जाया करती है। 4, उस प्रभु ने कुन मात्र कहने से सृष्टि की रचना की। 5, ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार, मंतिक उत्तर, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, पृष्ठ 2, पृष्ठ संख्या 676। अर्थात प्रभु ने 6 दिनों में 7 सितारे उत्पन्न किए और 2 अक्षरों कुन से 9 आकाशों की रचना की। अस दो रकम हफ्तो चहार आफरी, यक रकमश रास्त हजार आफरी। 1, अर्थात दो अक्षरों कुन से सात आकाशों एवं चार तत्वों की सृष्टि की, इस प्रकार एक शब्द से सहस्त्र वस्तुओं की उत्पत्ति की। तवानाए की दर यक तर तरफुतुल एन जे काफो नून बरु आवर्द कोनैन दो, अर्थात वह प्रभु ऐसा शक्तिशाली है कि उसने पल भर में काफ और नून दो अक्षरों कुन से दोनों लोकों को प्रकट किया। इसी प्रकार हिंदी सूफी कवियों ने भी लिखा है कि परमात्मा ने केवल एक शब्द कुन के उच्चारण मात्र द्वारा पृथ्वी से लेकर आकाश तक की सारी सृष्टि की रचना की। कवि नूर मोहम्मद ने लिखा है कि प्रभु ने कुन शब्द से सृष्टि का निर्माण किया, अर्थात उसने केवल यही कहा कि हो जा और यह सब कुछ हो गया। है जे ही नाद जगत यह करो तीन, शेख रहीम इसी भाव को व्यक्त करते हैं। एक शब्द कहा कुन केरा, सृजा भूमि आकाश घनेरा चार। मलिक मोहम्मद जैसी भी इस ओर संकेत करते हुए कहते हैं, निमिख न लाग करत ओही, सबै की न पल एक, गगन अंतरिक राखा, बाज खम्ब बिनु टेक पांच। एक, अमीर खुसरो मतला उल अनवार, नवल किशोर प्रेस लखनऊ, सन 1934 ईस्वी, पृष्ठ चार। दो, महमूद शबिस्त्री गुलशन राज, संपादक मौलवी अहमद हसन दिल्ली, पृष्ठ एक। तीन, अनुराग बांसुरी प्रयाग, संवत 2007 विक्रम, पृष्ठ 134। चार, भाषा प्रेम रस पांच, जायसी ग्रंथावली पद्मावत, पृष्ठ दो।